तारा परी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर कैसे दोनों भाइयों के छूते ही वो अंगूठी लॉकेट में बदल चुकी थी। इसका मतलब साफ था, नेक दिल इंसान एक नहीं बल्कि दो थे। तारा परी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। सोनल परी ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों अब अपना हाथ हटा सकते हो और जाकर सो जाओ। सोनल परी के इतना कहते ही वे दोनों जाकर सो गए। सोनल परी जानती थी कि उसका वशीकरण का असर जब तक रहेगा तब तक ये दोनों सो नहीं जाते, और जैसे ही ये दोनों सोकर उठेंगे वे बिल्कुल ठीक नॉर्मल उठेंगे और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, वे सब भूल जाएंगे। और उन दोनों के सोने के बाद सोनल परी तारा परी को लेकर उस कमरे में आ गई थी। तारा परी तो इतने शौक में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नेक दिल इंसान मिल चुका था, लेकिन वो एक नहीं दो थे। अब तारा परी का सिर चकराने लगा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सोनल परी उसकी स्थिति अच्छे से समझ रही थी। तब सोनल परी बोली, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक से नहीं बल्कि दो इंसानों से शादी करनी होगी। लेकिन ये सब होगा कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो इस पृथ्वी पर एक नेक दिल इंसान के लिए आई थी, लेकिन यहाँ एक नहीं दो दो नेक दिल इंसान थे। वे दोनों इधर उधर टहलने लगीं और सोच रही थीं कि इस दुविधा से उन्हें कौन निकाल सकता है। और तभी तारा परी के दिमाग में आ गया था कि कौन था जो उसके इस दुविधा को दूर करने में मदद कर सकता था, और वो सोनल परी को लेकर उस ओर चल दी थीं। वहीं दूसरी ओर मल्लिका के भेजे हुए कीड़े अमन के बंगले में घुस चुके थे और वे सब धीरे धीरे अमन के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अमन को पहचानने के लिए किसी पहचान या निशानी की ज़रूरत नहीं थी। वे मल्लिका की आंखों के आंसू थे जो बहुत अच्छे से अमन को पहचानते थे, इसलिए वे तेज़ी से अमन के कमरे की ओर चल रहे थे। और जल्दी ही वे लोग अमन के कमरे में पहुंच चुके थे, लेकिन अमन के कमरे में अमन के ही हूबहू मान को देखकर वे भी कन्फ्यूज़ हो गए थे। तब कुछ कीड़े आगे बढ़े और वे दोनों की जांघ पर चढ़ गए, और जैसे ही उन सभी कीड़ों ने अमन और मान पर वार किया और अपने दांत उन दोनों की जांघों में गाड़ने शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अमन और मान की जांघ पर काटा उसी पल वे कीड़े मरते चले गए। और कुछ ही देर में वहां मरे हुए कीड़ों का ढेर लग चुका था और धीरे धीरे एक एक करके वे कीड़े काला धुआं बनकर उड़ चुके थे। हुआ ये था कि अमन और मान के जिस्म में अभी सोनल परी की शक्तियों का वशीकरण था, जिसने अमन और मान की अनजाने में रक्षा कर दी थी। वहीं मल्लिका के आंसू बने कीड़े जब धुआं बनकर उड़कर मल्लिका की आंखों में वापस आ गए थे, वो धुआं मल्लिका की आंखों में चुभने लगा था। मल्लिका दर्द के मारे कराह उठी थी और वो समझ चुकी थी कि किसी जादुई शक्ति ने उसके आंसुओं को मार डाला था। अब मल्लिका को अगर कोई ठीक कर सकता था वो कोई और नहीं, उसका बॉस था। उसे जल्द से जल्द अपने बॉस के पास जाना था, क्योंकि अगर कोई उसे अब ठीक कर सकता था तो वो और कोई नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक उसका बॉस ही उसे ठीक कर सकता था। और मल्लिका अपने मालिक से मिलने के लिए एक गहरे घने जंगल में चली गई थी। और मल्लिका जल्दी ही एक अजीब से घर में घुस गई थी जो एक गुफा की शक्ल में था। वहाँ की सारी दीवारें एकदम काली थीं। कोई आम इंसान अगर उस भूतिया घर में जाता तो पक्का वो हार्ट फेल से मर सकता था। उस काली दुनिया के बादशाह का घर एकदम भयानक था। मल्लिका जैसी खतरनाक चुड़ैल को भी वहां जाने में डर लग रहा था, लेकिन वहां जाना मल्लिका की जरूरत थी, क्योंकि अगर वो वहां नहीं जाती तो पक्का उस धुएं की जलन से उसकी जान भी जा सकती थी। मल्लिका जैसे ही उस भूत बंगले में घुसी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सीधी चली आओ। पहले तो आवाज़ सुनकर वो कांप गई, लेकिन फिर हिम्मत रखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और जल्दी ही वो एक गुफा जैसे कमरे में चली गई थी। जैसे ही मल्लिका एक जगह जाकर खड़ी हुई तभी उसके पैरों के नीचे ढेर सारे काले काले बड़े भयानक कीड़े आने लगे। अचानक कीड़ों को देखकर मल्लिका की चीख निकल पड़ी, क्योंकि वे कीड़े मल्लिका के पैरों पर रेंगते हुए ऊपर तक जाने लगे थे। मल्लिका डर के मारे कांपने लगी थी। तभी एक आवाज़ वहां गूंजी, डरो मत मल्लिका, क्या इंसानों की तरह डर रही हो तुम? तुम इंसानों की यही समस्या है, चाहे कितनी शक्तियां तुम्हारे पास क्यों ना आ जाएं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर या चीजों को देखकर डरना कभी नहीं छोड़ोगे तुम लोग। तुम्हें याद है मल्लिका, जब तुम पहली बार डरी सहमी सी तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था, अगर तुम्हें हमारी काली दुनिया में शामिल होना है तो हमारी सारी बात माननी होगी। शायद तुम्हें याद नहीं, आज से ठीक 30 साल पहले जब तुम्हारी प्रेमी ने धोखा दिया था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी जंगल में तुम्हारी इज्जत लूटी थी और फिर मरने के लिए तुम्हें यहाँ फेंक कर चले गए थे, तब हमने तेरी जान बचाई थी। और मेरा यकीन मानो, उस वक्त अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो तुम कब की इस जंगल में नंगे बदन सड़ सड़ कर मर चुकी होती। उसके बाद हमने तुम्हें बचाया, और न केवल हमने तुम्हारी जान बचाई, हमने तुम्हें असीमित शक्तियाँ दी और एक ऐसी काली आत्मा तुम्हारे अंदर डाली जो जन्मों जन्मों से उन सफ़ेद जिन्नों की दुश्मन थी। लेकिन तुमने क्या किया, शक्ति मिलते ही तुमने अपने प्रेमी को उसके दोस्तों के साथ इसी जंगल में लाकर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। और उसके बाद तुमने क्या किया, तुम उस जिन पर आशिक हो गई जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, और तुम अपना दिल हार बैठी उस अमन सिंह राठौड़ पर। हमने तुम्हें अमन के पीछे काला साया बनाकर इसीलिए लगाया था ताकि तू उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर वो तिलिस्मी पत्थर हमें लाकर दे सके। लेकिन तुम तो उसके साथ बच्चा पैदा करने के ख्वाब देखने लगी, ये जानते हुए भी कि अमन सिंह राठौड़ की औलाद हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी कि अगर जिन महाराज के वारिस की औलाद पैदा हुई तो उसमें इतनी शक्तियां होंगी कि वो एक पल में पूरी काली दुनिया का खात्मा कर सकता है, और तुम वही औलाद पैदा करने के ख्वाब देखने लगी। शायद तुम्हें पता नहीं है, अब तक अमन की जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई हैं, हमने एक एक करके उन सबको उससे अलग कर दिया और अमन के सामने उन लड़कियों को एकदम आवारा और बच्चलन साबित कर दिया। और इतना ही नहीं, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उस लड़की का दिमाग अपने वश में करके हमने उस लड़की को उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के के साथ सुला दिया और अमन को वही दिखाया जो हम चाहते थे, और उसे औरतों से नफरत करने पर हमने मजबूर कर दिया था। मलिका सांस थामे दर्द से कराहती हुई अपने मालिक की सारी बातें सुन रही थी। तब वो आगे बोला, तुम्हें पता है इंसानों को अपनी दुनिया में मैं इसीलिए शामिल नहीं करता हूँ क्योंकि तुम इंसानों के पास चाहे कितनी भी शक्तियां आ जाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर का डर कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब तुमने क्या किया, तुम अमन के पास चली गई उसका बच्चा पैदा करने के लिए, पर एक बात जान लो तुम, हम अमन का बच्चा इस दुनिया में नहीं आने देंगे और ना ही किसी लड़की को उसके करीब जाने देंगे। और हमने तुम्हें काला साया बनाकर अमन के पीछे लगाया था ताकि वो नई लड़की जो अमन की जिंदगी में आई है उसे तुम अमन से दूर कर सको, लेकिन तुम खुद उसके साथ सोने के ख्वाब देखने लगी थी। तब मलिका अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज मेरी मदद करो, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं।
प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मैं अब अमन के करीब जाने का नहीं सोचूंगी, बस उस पर नजर रखूंगी और उस तारा या किसी और लड़की को उसके करीब नहीं आने दूंगी। आप प्लीज इस बार मेरी जान बचा लो, प्लीज मालिक रहम करो मुझ पर, ये कीड़े मेरी जान ले लेंगे, मैं मरना नहीं चाहती, मैं वचन देती हूँ मैं कभी अमन को पाने की कोशिश नहीं करूंगी, बस एक काला साया बनकर उसके पास रहूंगी, आप मेरी जान बचा लो प्लीज। तब उसका वो मालिक हंसने लगा था। वो कितनी देर तक बुरी तरह से हंसता रहा। मलिका को उसकी हंसी बेहद चुभ रही थी, वो रोने लगी थी। तब उसके मालिक ने कहा था, ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा, हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने तेरे दोस्त उस काले सांप का किया था। सर्प का नाम सुनते ही मलिका हैरानी से उस आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसके मालिक ने कहा, ऐसा क्या देख रही हो, अपने पीछे देखो। मलिका ने जैसे ही पीछे देखा उसकी एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि उसका वो काला सांप दोस्त जिसने अमन को वश में करने में उसकी मदद की थी उसको एक शीशे वाले पिंजरे में बंद करके उसमें आग लगा रखी थी, और वो बड़ा ही भयानक लग रहा था। इतनी भयानक सजा देखकर मलिका कांपने लगी और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, मुझे एक मौका और दे दीजिए मालिक, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगी, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं अपना काम बड़े ही ध्यान से करूंगी और इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, बस इस बार आप मेरी जान बचा लीजिए। तब उसके मालिक ने कहा था, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हें एक आखिरी मौका और देंगे, और अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो अंजाम तुम्हें पता ही है। मलिका ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी ही जो कीड़े मलिका के जिस्म पर मौजूद थे वे रेंगते हुए सभी उतरने लगे थे, और धीरे धीरे करके सब कीड़े मलिका के जिस्म से उतर गए थे, और उसके बाद मलिका की आंखों में जो धुआं था वो निकलने लगा था। और कुछ ही देर के बाद मलिका बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो अपने मालिक का शुक्रगुजार करती हुई वहां से जाने लगी थी। तभी उसके मालिक की आवाज सुनाई देने लगी थी, एक बात याद रखना मलिका, हमने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया है। मलिका ने हाँ में सर हिलाया और एक काला साया बनकर अमन के बंगले की ओर चल पड़ी थी।